नमस्कार भारत, तारीख 19 जून, दिन सोमवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर किया कब्जा। पाकिस्तान में मन रहा है जश्न।
ये खोली शोली ये घर जाके सो जाए। पहले ओवर में हमने ऐसी विकेट ग्रहण की कि मेरे ख्याल से इनके होश उड़ गए।
लेकिन हॉकी के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को हराया। फ्रांस की संसद में इमैनुएल मैक्रों को मिला बहुमत, पर इस बार लोगों ने बहुत कम वोट डाले।
57% जो लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाला। जब से फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन बनी है इतना जबरदस्त एब्सटेंशन रेट कभी नहीं हुआ।
कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे वुसतुल्ला खान की डायरी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर पाकिस्तान ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। लंदन के ओवल मैदान में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम के 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम मात्र 158 रनों में सिमट गई। आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल के इतिहास में रन के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। फ्रांस के गृह मंत्री का कहना है कि संसदीय चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। मैक्रों की लॉ रिपब्लिक एन मार्श और सहयोगी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी को 300 से अधिक सीटों पर जीत मिली है। इराक की सेना ने कथित इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले पुराने मोसुल शहर को वापस लेने के लिए चरमपंथियों पर हमला कर दिया है। शहर में सेना और इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के बीच भारी लड़ाई जारी है। पुराना मोसुल शहर इस चरमपंथी संगठन के कब्जे वाला आखिरी शहर है। चरमपंथी रोधी दस्ते के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल गनी अल असदी का कहना है कि सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ताकि नागरिकों की मौत न हो।
اليوم العمليه بدات الساعه 600 صباحا ومنطقه مكتظه بالبناء
صبح کے 6 بجے پہلا ابھیان شروع کیا گیا اس علاقے میں کافی عمارتیں ہیں یہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے تو ظاہر ہے کہ عام ناگرکوں کو بچانے کے لیے ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے اور ان کی پہلی سرکشا پنکتی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے ایک بار اتنا اندر جانے کے بعد ہم نزدیکی علاقوں میں جانے کی کوشش کریں گے चरमपंथी रोधी दस्ते के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल गनी अल असदी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पुर्तगाल में सैकड़ों अग्निशमन कर्मचारी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आग के कारण 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों की मौत उनके कार में ही हो गई जब वो घने जंगलों से घिरे पेद्रोवा ग्रांदे जिले में आग से बचने की कोशिश कर रहे थे। बीती रात आग से बचकर निकलने वाले गैरेथ रॉबर्ट्स फिलहाल टॉमर में हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया,
Almost instantly he saw the fire on the right hand side of the car and within 10-15 seconds at the most the wind that the fire
अचानक ही हमें अपनी कार की दाईं तरफ आग दिखी और 10-15 सेकंड के भीतर ये आग तेज हवा के कारण सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई। कार के पीछे की तरफ भी आग थी। हमारे पास आग के भीतर से होकर गाड़ी भगाते रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम चलते रहे और थोड़ी देर बाद हमें कुछ और कारें दिखी। पहाड़ी पर मौजूद एक गांव में पहुंचने के बाद मैं कार से उतरा और मैंने अपने सामने खड़ी लड़की से पूछा कि अब हम कहाँ जाएं। उन्होंने कहा, कहीं नहीं, यही हमारा अंत है। ये सुनकर मैं भीतर तक सिहर गया। ये थे आग से बच के निकलने वाले गैरेथ रॉबर्ट्स। माली में सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि राजधानी बमाको के पास एक पर्यटक कैंप पर बंदूकधारियों ने हमला किया है। संदिग्ध जिहादियों ने एक रिजॉर्ट पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। माली और फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी मौके पर पहुंची। रिजॉर्ट से करीब 30 लोगों को बचाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी थी और धुआं उठता दिखा था। सीरियाई सरकार का कहना है कि अमरीकी नेतृत्व में गठबंधन सेना ने रक्का प्रांत में उसके एक लड़ाकू विमान को गिरा दिया है। राष्ट्रीय टेलीविजन में प्रसारित समाचार में बताया गया कि सीरियाई सेना ने कहा है कि यह विमान कथित इस्लामिक स्टेट पर हमला करने जा रहा था जब उस पर हमला हुआ। सेना का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में इस घटना के भयावह परिणाम होंगे। ईरान की मीडिया के अनुसार देश के सुरक्षा बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कथित तौर पर सीरिया में मौजूद आतंकियों के ठिकाने पर कई मिसाइलें दागी हैं। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت میں آپ کا سواگت ہے. اس کارکرم کو آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com پر بھی لائیو سن رہے ہیں. اس سمے اس سے پہلے کہ ہم کارکرم کی شروعات کریں, ابھی ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ اتری لندن میں پیدل چلنے کے لیے بنے راستے پر ایک گاڑی چڑھ گئی ہے جس میں کہ کئی لوگ گھائل ہو گئے ہیں, اور پولیس نے اس معاملے میں ایک ویکتی کو گرفتار کیا ہے. لندن ایمبولینس سیوا کے پروکتا کا کہنا ہے کہ ہم نے حملے کی جگہ پر کچھ لوگوں کی مدد مانگی ہے, لیکن ابھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کیا یہ واقعی ایک درگھٹنا ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ادھیکاریوں کو صبح بلایا گیا اور وہ گھٹنا استھل پر پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ گھائل ہیں ان کو لے جایا جا رہا ہے. کارکرم میں ہم اس کے بارے میں اور جانکاری بھی آپ کو دیتے رہیں گے, اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی ہماری بڑی خبر, ہم چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں گے. میرا نام ہے موہن لال شرما. چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں بھارت کے سامنے جیت کے لیے 339 رنوں کا لکش تھا. روہت شرما اور شیکھر دھون کی سلامی جوڑی سے زوردار شروعات کی امید تھی, لیکن پاکستان کے تیز گیند باز محمد عامر کے ارادے دوسرے تھے. سیمی فائنل مقابلے میں چوٹ کے چلتے نہ کھیلنے والے عامر اس مقابلے کے لیے نہ کیول فٹ ہو کر لوٹے, بلکہ انہوں نے اپنے دم پر بھارت کو گھٹنوں پر لا دیا. بھارت کی ٹیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر 180 رنوں سے ہار گئی. تو کل کا دن پاکستان کرکٹ ٹیم کا تھا. اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں پاکستان کے جیتنے کی کہانی, لاہور سے آ رہی ان آوازوں کو سنتے ہیں جو کہ جشن میں ڈوبی ہیں. یہاں کرکٹ پریمیوں کے بیچ جا پہنچی ہماری سہیوگی ہنا سعید.
کانٹے کا مقابلہ ہوا اوول گراؤنڈ میں اور شکست دے دی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو. کیا آپ امید کر رہے تھے کہ پاکستان جیتے گا؟
فرسٹ ٹائم جو کھیلا تھا انڈیا کے خلاف وہ ہار ہماری ویکنیس تھی, لیکن اس بار ہم نے پوری پرفارمنس کے ساتھ آئے تھے, پوری بریلینٹ پرفارمنس دی ہے اس بار ہمارے سرفراز والوں نے. ٹھیک ہے, ہماری ٹیم نے پوری پرفارمنس دی ہے اور اس بار ہم نے جیت کر دکھایا ہے.
زیادہ خوشی جو ہے چیمپئنز ٹرافی جیتنے کی ہے یا بھارت کو ہرانے کی؟
بھارت کو ہرانے کی ہے. بہت اچھا لگا, پاکستان بہت اچھا کھیلا ہے, بہت خوشی ہوئی ہے, پوری عوام کو خوشی ہوئی ہے.
یہاں پہ کچھ بچے بھی موجود ہیں.
بہت مزہ آیا, ہم سمجھ رہے تھے کہ بھارت جیت جائے گا, لیکن فخر زمان نے کھیلا تو ہمیں پتا چلا کہ میچ ایسے کھیلتے ہیں.
کس کی بولنگ اچھی لگی آپ کو؟ آپ کو کیسا لگا محمد عامر کی واپسی ہوئی؟ پاکستان نے یہ میچ کیسے جیتا, کیا اسٹریٹجی تھی؟
ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی عامر واپس ٹیم میں آیا ہے, کیونکہ ہمارا مین بولر ہی وہی ہے. تو کل ہم نے پروگرام چلتا ہے انڈیا کے ساتھ, وہ ہم نے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے بیٹس مین دو دن اوپر سے اڑ بھی جائیں تو پھر کیا ہوا, ہماری تو لائن لگی بیٹس مینوں کی, اللہ کی مہربانی سے سارے مٹی کر دی ہیں. اللہ کی مہربانی سے میری چتے یہ کھولی شولی یہ گھر جا کے سو جائیں. پہلے اوور میں ہم نے ایسی وکٹ گرہین کی کہ میرے خیال سے ان کے ہوش اڑ گئے.
پاکستانی قوم بہت پرجوش ہے اس جیت پر, اور یہ سیلیبریشنز پاکستان میں جاری رہیں گی اگلے کچھ روز تک. ہنا سعید, بی بی سی ہندی, لاہور.
تو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. فائنل میں ملی بھارت کی ہار, اور پاکستان کی شاندار جیت کی کہانی سنیے ہمارے سہیوگی آدیش کمار گپت سے, جنہوں نے اس مقابلے کو بڑے دھیان سے دیکھا.
ہوا میں اور یہاں پر پاکستان نے جیت حاصل کر لی ہے. یہ چیمپئنز ٹرافی کا مقابلہ تھا, ماں مقابلہ تھا یہ بھارت بنام پاکستان کا.
جی ہاں, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے جس فائنل کو مہا مقابلے کا نام دیا جا رہا تھا, وہ پاکستان نے بے حد آسانی سے 180 رن سے اپنے نام کیا. بھارت کے سامنے جیت کے لیے 339 رنوں کا لکشیہ تھا, لیکن دگگجوں سے بھری بھارتی ٹیم 30.3 اوور میں ہی کیول 158 رن پر ڈھیر ہو گئی, اور ایسا لگا جیسے پاکستان کے لیے یہ جیت بائیں ہاتھ کا کھیل تھی. اور ہو بھی کیوں نہیں, جب بائیں ہاتھ کے سلامی بلے باز فخر زمان نے 114 رنوں کی شتکی پاری کھیلی ہو اور اپنے جوڑی دار اظہر علی کے ساتھ مل کر پہلے وکٹ کے لیے 128 رن جوڑے ہوں. اظہر علی نے بھی 59 رن بنائے, اور جب وہ آؤٹ ہوئے تب پاکستان کا اسکور 2 وکٹ کھو کر 200 رن تھا. خطرے کی گھنٹی بھارت کے لیے بجنے لگی تھی, اور اس کے بعد محمد حفیظ ने भी नाबाद 57 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजी की पोल खोल दी। 50 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट खोकर 338 रन था और जब भारतीय पारी शुरू हुई तो रोहित शर्मा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की तीसरी ही गेंद पर पकबाधा होकर चलते बने। फिर और बड़ी बाधा आमिर ने ही खड़ी की जब उन्होंने कप्तान विराट कोहली को भी निपटाया। कोहली केवल 5 रन बना सके। स्टेडियम में भारतीय समर्थक सन्नाटे में आ गए।
वो जो थोड़ी सी आशा थी कैच छूटने के बाद वो तब्दील हो गई निराशा में कोहली और भारतीय फैंस के लिए। ये हरा रंग अब ओवल पर चढ़ रहा है, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है।
33 रन तक पहुंचते पहुंचते शिखर धवन भी भारत का साथ छोड़ गए। युवराज सिंह भी 22 और महेंद्र सिंह धोनी केवल 4 रन बना सके। आधी टीम 54 रन पर पेवेलियन में थी। वो तो भला हो हार्दिक पांड्या का जिन्होंने 76 रन बनाकर थोड़ा सम्मान बचाया। मोहम्मद आमिर के बाद जलवा छाया एक और तेज गेंदबाज हसन अली का जिन्होंने 19 रन देकर धोनी आर अश्विन और बुमराह को आउट किया। वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। भारत का आखिरी विकेट उनके नाम रहा।
जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं वो बयान कर सकूं। जो लास्ट विकेट था मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट।
अंततः पाकिस्तान ने 180 रनों से फाइनल अपने नाम किया और पहली बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना। दो बार का चैंपियन भारत बुरी तरह हारा और उसका खेल हर क्षेत्र में ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा साबित हुआ।
ओवल जहां पर यह मुकाबला खेला गया वहां क्या चल रहा था? बीबीसी संवाददाता इश्लीन कौर ने बात की भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों से।
हम ओवल स्टेडियम के बाहर से बात कर रहे हैं जहां पर कुछ पाकिस्तान के फैन और कुछ इंडिया के फैन हमारे साथ हैं। सबसे पहले कुछ यंग इंडियन फैन से बात करते हैं। बताइए आपको क्या लगा, कहां पर इंडिया से चूक हो गई?
शायद पहले बैटिंग करते तो मे बी अच्छा लगता, मे बी शायद हम फील्डिंग और ज्यादा करते तो शायद में मोर विकेट्स ले सकते बाद में।
इंडिया शुरू से एक बहुत ही फेवरेट टीम रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान ने किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जो पूरा आउटडू कर गए?
पाकिस्तान बहुत अच्छा बैटिंग किया। बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग पहले से बहुत खराब था। पर्सनली आई थिंक विकेट नहीं ले सकते थे, ओनली रन आउट जनरली थ्रू द टूर्नामेंट।
तो आप लोग?
मैं थोड़ा अपसेट हूँ, मेरे फ्रेंड्स इतना अपसेट नहीं हूँ, एंड सेम एज द फैंस, बट आई थिंक पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला एंड आई थिंक फाइनल परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
लेकिन हमारे साथ यहाँ विनिंग टीम के फैन भी हैं।
देखें तो ये तो हम लोग तो बहुत लकी थे कि हम यहाँ इस टूर्नामेंट में आए भी। हम लोग 9th और 8th पोजिशन पे हो सकते थे और हमारी जो थ्रैशिंग हुई थी इंडिया से उसने हमें एक सबक सिखाया था। मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान वॉन्टेड इट मोर, इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान चाहता था ये मैच जीतना, और मेरे ख्याल से आज आवाम के लिए और पूरे मुल्क के लिए और पूरे जो एरिया है उसके लिए पाकिस्तान की विक्ट्री बहुत अच्छी है ये।
जब आपने देखा उनकी जो पहली पारी उन्होंने खेली उसके बाद किस तरह का इमोशन था?
कैप्टन विराट कोहली की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि टॉस जीतने के बाद उसने पाकिस्तान को डाला बैटिंग के लिए। ऐसे प्रेशर मैच में इंडिया को पहले बैटिंग करना चाहिए था क्योंकि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडियन प्लेयर्स पे पड़ गया।
इंडियन और पाकिस्तानी फैंस इकट्ठे हैं यहाँ पर खड़े हैं, एनी लास्ट वर्ड्स कुछ आप कहना चाहेंगे?
ये थी ओवल के मैदान की आवाजें। खेल के मैदान में बड़ा सितारा वो होता है जो महत्वपूर्ण मौके पर अपनी भूमिका को दमदार ढंग से निभाए, और जब वो सितारा पाकिस्तान का हो तो वो भारत के खिलाफ किसी मुकाबले पर चूकना नहीं चाहता। पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमन ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में महत्वपूर्ण पड़ाव बना लिया और भारत के खिलाफ एक ताबड़तोड़ शतक बना दिया। इस टूर्नामेंट से पहले क्रिकेट की दुनिया ने फकर जमन का नाम शायद ही सुना होगा। इस टूर्नामेंट में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और फाइनल में 106 गेंदों में 114 रन ठोके। मुकाबला खत्म होने के बाद आदेश कुमार गुप्त ने वरिष्ठ खेल समीक्षक अयाज मेमन से बात की और पूछा कि पाकिस्तान की ये जीत कितनी हैरत अंगेज थी।
किसी ने सोचा नहीं था कि ये इस तरह से जीतेंगे। हालांकि फाइनल में पहुंचे थे लेकिन इंडिया के मुकाबले काफी हल्का था उनका परफॉर्मेंस, खास करके बल्लेबाजी में। जरूर मोहम्मद आमिर ने बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग स्पेल डाला था लेकिन अगर 338 रन नहीं बनते तो ये मैच मुश्किल हो जाता था पाकिस्तान को जीतने के लिए।
वैसे भारत की हार के 2-3 मोटे मोटे कारण आप बताना चाहें?
तो एक बात तो ये थी कि शायद पहले टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए था। उसके बाद मैं कहूंगा कि थोड़ा किस्मत ने साथ नहीं दिया कि शुरू में फखर जमान जो है बोल्ड हुए नो बॉल पे, कुछ ऐसे एजेस जो थे वो हाथ में नहीं गए या हाथ के दूर, हाथ से थोड़े दूर चले गए, लेकिन किस्मत को आप ज्यादा दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पोर्ट है। तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, खास करके फखर जमान ने जिस तरह से स्पिनर्स को खेला, और स्पिनर्स में से आर अश्विन जो ऑफ स्पिनर है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसी वजह से वो खिलाए गए थे कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन को दिक्कतें पैदा करे, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त अटैक किया अश्विन को, और ये दोनों स्पिनर जडेजा और अश्विन आज बहुत महंगे साबित हुए। वहीं से गेम जो है हाथ से बिल्कुल निकल गई इंडिया के।
और आपको लगता है कि जो स्पेल मोहम्मद आमिर ने डाला जब विराट कोहली को उन्होंने पेविलियन भेजा और उसके बाद जब युवराज सिंह भी आउट हुए, तो आपको लगता है कि तब तो भारत के हाथ से मैच 100% निकल गया?
देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कमर टूट गई थी जब तीसरी विकेट गिरी, क्योंकि हालांकि युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है, जबरदस्त रन चेसर्स हैं, लेकिन अगर आपके सामने पहाड़ जैसा स्कोर हो 338 का, 339 रन बनाने और पहले 10 ओवर में 3 विकेट खो देते, वो भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन के, वहां से तो जीतना एक नामुमकिन हो जाता। मैं नहीं कहूंगा कि मौका बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर आप देखें कि अगर बड़ा स्कोर आपके सामने हो तो बहुत जरूरी होता है कि आपके हाथ में विकेट्स हो। दाद देनी होगी पाकिस्तान की, आज उन्होंने बैटिंग में और बॉलिंग में और फील्डिंग में भी बहुत शानदार फील्डिंग की उन्होंने, तो ओवरऑल जो आप कहते हैं जैसे एक टीम को आउटप्ले करते हैं, वैसे इंडिया आज आउटप्ले हो गई।
भारत की हार और पाकिस्तान की जीत के कारणों का विश्लेषण कर रहे थे अयाज मेमन, और इसी हार जीत पर सुनिए पाकिस्तान से वुसतुल्लाह खां की डायरी।
मैंने पिछले हफ्ते क्या कहा था, यही ना कि मुद्दा मैच जीतना नहीं, इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को हराना है, और वही हुआ। फर्ज करें यही मैच पाकिस्तान की बजाय साउथ अफ्रीका जीतता तो क्या कानपुर में गसीले लोग बाग टीवी तोड़ते, क्या जीत की खुशी में पेशावर में हवाई फायरिंग से 5 बच्चे जख्मी होते। मुझे तो सबसे अच्छी मैच से पहले की एक तस्वीर लगी, महेंद्र धोनी ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद के बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। पहली बार किसी इंडियन क्रिकेटर पे प्यार आया जिसने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को बेवकूफ़ कहा हो, यानी आमिर सोहेल को। सुना है भारत ने पाकिस्तान को हॉकी में 7 गोल ठोक दिए। पाकिस्तानी चैनलों में तो इस खबर के लिए स्क्रीन के निचले हिस्से में चलने वाली पट्टी पे भी कोई जगह नहीं थी, और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी ने इस पे प्रोग्राम कर डाला। ये प्रोग्राम उसी चैनल पे ही हो सकता था जहां हॉकी में भारत की विजेता से भी ज़्यादा खुशी इस बात की बनाई गई कि भारतीय टीम ने काली पट्टियाँ बांध के इन प्रोटेस्ट मैच खेला, यानी ए आतंकवादियों, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, मगर क्या करें, टूर्नामेंट की मजबूरी है। व्हाट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम की वतन से मोहब्बत के बारे में अर्नब जी क्या कहेंगे, जिन्होंने बिना काली पट्टी बांधे ओवल में पाकिस्तान का सामना किया। कहिए ना देशद्रोही। क्या मोदी जी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अब तक बधाई का ट्वीट किया? करना चाहिए, खेल में क्या भेदभाव, खिलाड़ी तो सांझे होते हैं। कल तक तुम जीतते रहे, आज हम जीत गए, कल जाने कौन जीते, कल हो ना हो। तभी तो मैं कहता हूँ कि खिलाड़ी नेताओं और एंकरों से तो अच्छे ही होते हैं, जो करते हैं सामने करते हैं, नहीं करते तो वो भी सामने आ जाता है, ना उनकी हार में मिलावट ना जीत में। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर मैदान के बाहर एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, ये सुनने की भी बातें हैं और सीखने की भी। पर ये राम पीटी सियासत इतनी निगोड़ी है कि एंकर्स छोड़ अच्छे भले क्रिकेटी नेता को भी तंग दिल बना देती है। एक ऐसे वक्त जब पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है, वर्ल्ड कप 1992 के विजेता इमरान खान का ट्वीट पढ़ने लायक है, पाकिस्तान भारत को हराकर चैम्पियन बन गया, अब पूरी कौम को भ्रष्टाचार माफिया के हारने का इंतज़ार है। यानी खान साहब ने कल भी सियासत से छुट्टी नहीं की और बधाई के दूध में मैंगनियाँ डालना ज़रूरी समझा, हालांकि यही मैंगनियाँ आज तक के लिए भी सहती जा सकती थी। अर्नब हो के इमरान खान के आमिर सोहेल, ऐसी मखलूक हर देश में पाई जाती है। धोनी जैसे लोग कम सही पर याद सबसे ज़्यादा रहते हैं। यूँ गया शनिवार और एतवार बहुत देर तक याद रहेगा, आज से फिर घटियापन शुरू।
ये थी पाकिस्तान से वुसतुल्लाह खां की डायरी। और अब कार्यक्रम में हम आपको सीधे ले चलते हैं दार्जिलिंग, जहां पिछले कई दिनों से हिंसा और तनाव व्याप्त है। हमारे सहयोगी रवि प्रकाश वहां पर मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दार्जिलिंग की स्थिति कैसी है, क्या वही तनाव अभी भी मौजूद है?
दार्जिलिंग में अब भी तनाव है, जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं और लोगों में भय का माहौल है। आज बंदी का पांचवा दिन है और पांचवें दिन भी सारी दुकानें बंद रहेंगी, ऐसा आह्वान किया गया है। कुल मिलाकर दार्जिलिंग में अभी की स्थिति यही है, इंटरनेट की सेवा ठप कर दी गई है ताकि जो आंदोलनकारी हैं वो अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह न पहुंचा पाए।
रवि प्रकाश, ये बताइए कि अब मैं ये जिक्र करूं कि वहां के जो स्थानीय अखबार हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बड़ी खबर में दार्जिलिंग में चल रहा आंदोलन गोरखालैंड को लेकर है या फिर भारत और पाकिस्तान का मैच?
यहाँ पे दिलचस्प तरीके की खबरें छपी हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ तीन भाषाओं के अखबार लोग पढ़ते हैं, हिंदी तो है ही है, अंग्रेजी के अखबार यहाँ आते हैं, इसके अलावा नेपाली और बांग्ला के अखबार भी यहाँ पढ़े जाते हैं। जो नेपाली के अखबार है हिमालय दर्पण और हाम्रो प्रजाशक्ति, इसके पहले पन्ने पर क्रिकेट की कोई खबर नहीं है। भारत मैच हार गया है और हॉकी में भारत को जीत मिली है, यह खबर खेल के पन्ने पर दी गई है। इन दोनों ही अखबारों के पहले पन्नों पर जो जल समुद्र उमड़ा था कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों का, इसकी तस्वीरें हैं, इसकी खबरें हैं। लेकिन जो अंग्रेजी के दो अखबार हैं टेलीग्राफ एसेसमेंट, लोगों ने पहले पन्ने पर तस्वीर छापी है क्रिकेट की मैच की, और लीड खबर इनकी भी वही है जो दार्जिलिंग में की हिंसा में मारे गए तीन लोगों के शवों के साथ जो प्रदर्शन कर किया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने, वो खबर इनके यहाँ लीड छपी है। स्टेटमैन अखबार ने एक दिलचस्प खबर छापी है, वो यह है कि सऊदी अरबिया से जेट एयरवेज की फ्लाइट में आ रही महिला को, वो प्रेग्नेंट महिला ने बच्चा जन्म दिया एरोप्लेन में ही जब ऑन बोर्ड थी, तो जेट एयरवेज ने यह घोषणा की है क्योंकि उस बच्चे का जन्म एयरबोर्ड हुआ है तो पूरी जिंदगी उसे मुफ्त में टिकट देगा वही एयरवेज।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रवि प्रकाश दार्जिलिंग से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत, और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लंदन में फुटपाथ पर एक गाड़ी चढ़ गई है और इस गाड़ी ने कुछ पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी है जिसमें कि कई घायल हैं। ये इलाका दरअसल फिन्सबरी पार्क मस्जिद का है और इस सड़क का नाम है सेवन सिस्टर्स रोड। मेट्रो पुलिस ने इस घटना को बड़ी घटना बताया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इलाका काफ़ी व्यस्त था क्योंकि लोग शाम की प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, बाकी और ब्योरे की प्रतीक्षा है। कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस से संसदीय चुनाव में मौजूद राष्ट्रपति मैक्रों की लॉ रिपब्लिक एंड मार्च पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है और इस जीत पर देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने कहा है कि देश को राष्ट्रपति और सरकार को जनता ने अपना बहुमत दे दिया है। और जानकारी के लिए मैंने बात की फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावने से और पूछा कि कोई चौंकाने वाली बात इन चुनावों में?
ऑलमोस्ट 57% जो लोग थे उन्होंने वोट नहीं डाला। जब से फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन बनी है 1958 साल से इतना जबरदस्त एब्सटेंशन रेट कभी नहीं हुआ। इसके लिए काफी कारण है, एक के बाद दूसरा इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त लोगों का एंथुजियाज्म बहुत बढ़ गया था, अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके हर बार दो राउंड होते हैं हर इलेक्शन के लिए, तो लोगों के की तरफ थकाव भी आ जाता है, वो कहते हैं नहीं बोर हो गए हैं इलेक्शन के साथ।
अभी जो पोल के नतीजे बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं?
वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में अच्छी मेजोरिटी मिल गई है। ये भी कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम राइट विंग मारीन लपेन की जो पार्टी है उसमें उनको पहली बार 8 सीटें आई हैं या 9 सीटें आएंगी, और उनके पास पिछले लेजिस्लेचर में एक भी सीट नहीं थी। हालांकि वोट शेयर जो था बहुत कम हो गया, फिर भी पहली बार उन्हें 8 या 9 डेप्यूटीज मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीम राइट का पार्लियामेंट के अंदर ग्रुप नहीं बन सकता, लेकिन वो पार्लियामेंट में आ गए हैं।
तो इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फ्रांस की राजनीति पर क्या असर देखती हैं? ये जो मैक्रो जीते हैं
जी हाँ।
उसका असर क्या कुछ होने वाला है या?
इसका मतलब ये होगा कि वो बड़ी आसानी से जो भी उनको चेंजेस लाने हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि इधर के लेबर लॉज जो हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, इस वक्त आप किसी को नौकरी से बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं, वो मैक्रों कह रहे थे कि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसके साथ साथ हमें भी बदलना है, वो पुराने ढंग के टोटल जॉब सिक्योरिटी के जो जॉब्स हैं इस जमाने में नहीं हम रख सकते हैं, तो वो लोगों को हायर करना और फायर करना, वो इस चीज के लिए उनके हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं इस वोट की तरफ से। और फिर ऑपोजिशन, मतलब इतना जोरदार ऑपोजिशन नहीं रहा क्योंकि उनको पार्लियामेंट में अच्छी खासी मेजोरिटी आ गई है। इंटरनेशनली इनका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसकी वजह से पार्लियामेंट का इतना बड़ा रोल वैसे भी नहीं होता, लेकिन ये हम भूलें नहीं कि इस वक्त यहाँ पर टेररिज्म की वजह से इमरजेंसी चल रही है, और इस इमरजेंसी को अगर मैक्रों जारी रखना चाहे तो उन्हें पार्लियामेंट का उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उस लॉ को पार्लियामेंट ने ही एक्सटेंशन दे सकते हैं।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नराव ने बता रही थीं कि वहां पर किस तरह से चुनाव हुए और राष्ट्रपति मौजूदा जो हैं उन्होंने किस तरह से जीत हासिल की है। और अब कार्यक्रम में एक बार फिर से हम खेलों का जिक्र करेंगे। आज खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम नहीं है। कल भारत के श्रीकांत ने इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया, तो हॉकी के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। जहां एक तरफ क्रिकेट में भारत को हार मिली, वहां ये 2-2 जीते मिली हिंदुस्तान को। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने ही नजर रखी है इन मुकाबलों पर भी।
भारत पाकिस्तान से क्रिकेट के महामुकाबले में हारा, लेकिन हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान से ही 7-1 से जीता। और बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत के श्रीकांत ने कल इंडोनेशिया ओपन अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने गैर वरीयता हासिल जापान के काजुमासा साकाई को 21-11, 21-19 से बात दी। के श्रीकांत को भी इस टूर्नामेंट में कोई वरीयता नहीं दी गई थी, लेकिन श्रीकांत ने फाइनल को केवल 37 मिनट में ही अपने नाम किया। पहले गेम में तो जापानी खिलाड़ी काजुमासा श्रीकांत के सामने टिक ही नहीं सके। दूसरे गेम में उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर किया, लेकिन श्रीकांत ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए 21-19 से गेम और मैच अपने नाम किया। के श्रीकांत की खिताबी जीत को लेकर भारत के पूर्व एशियन चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी दिनेश खन्ना कहते हैं,
बात यह है कि इस बार जो देखने को मिला कि वो अपना जो अटैक है उसको बहुत समझ से और कुछ बूझ से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिफेंस का भी प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी कोर्ट कवरेज थी, और मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी फिटनेस और स्टेमिना भी उन्होंने दिखाया।
उधर लंदन में आयोजित किए जा रहे वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में कल भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी मात दी। भारत के लिए तलविंदर सिंह, हरमनप्रीत सिंह और आकाशदीप सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि एक गोल प्रदीप मोर ने किया। उल्लेखनीय है कि पूल ए में दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, मेजबान इंग्लैंड, चीन और मलेशिया शामिल हैं, जबकि पूल बी में भारत, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और कनाडा शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले से पहले भारत ने स्कॉटलैंड को 4-1 से मात दी। अब भारत का अगला मुकाबला नीदरलैंड से होगा।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। उत्तरी लंदन के फिंसबरी पार्क मस्जिद के पास एक गाड़ी ने पैदल चलने वालों को टक्कर मारी है। पुलिस का कहना है कि कई लोगों की हताहत होने की आशंका है। पुलिस ने कहा है कि कई लोग जख्मी हुए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये कोई दुर्घटना है या फिर इन घटना को किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि आपात स्थिति के कारण 7 सिस्टर रोड को बंद कर दिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर पाकिस्तान ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फ्रांस के गृहमंत्री का कहना है कि संसदीय चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। इराक की सेना ने कथित इस्लामी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले पुराने मोसुल शहर को वापस लेने के लिए चरमपंथियों पर हमला कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। शाम को 7:30 बजे दिनभर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें और bbchindi.com के पन्ने पर आते रहें, जहां पर लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं। नमस्कार।